ॐ शांति ॐ शांति। आज प्यारे प्यारे बाबा ने हम बच्चों को पुरुषार्थ करने के लिए और साथ साथ बाहर के लोगों के लिए भी बाबा ने बताया। बाबा ने कहा कई बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं कि ड्रामा पुरुषार्थ कराएगा तो करेंगे। बाबा कहते ड्रामा तो कह रहा है पुरुषार्थ करो, क्यों नहीं आप करते? ड्रामा तो कह रहा है तो भी पुरुषार्थ नहीं करते हैं। दूसरी बात बाबा ने कही कि बच्चों को याद की यात्रा से ही अपनी बैटरी को चार्ज करना है। बाबा ने कहा कि उस समय बाबा के टाइम पर एक जैसे दूसरा निकलता है ना इमरजेंसी बैटरी, तो इमरजेंसी बैटरी के द्वारा ही चार्ज कर लेते थे। तो बाबा ने कहा कि ऐसे जैसे इमरजेंसी बैटरी से भी चार्ज करते तो आत्मा को भी याद की यात्रा से चार्ज करना है। फिर बाबा ने कहा बाबा आते बच्चों का श्रृंगार करने के लिए तो तुम बच्चों को भी अपना श्रृंगार करना है। बाबा ने फिर ध्यान खिंचवाया कि कहा जाता है सच की नैया जो है उसको तूफान लगते हैं लेकिन डूबती नहीं है। बाबा ने कहा कि अभी कई आर्टिफिशियल निकल चुके हैं इसलिए सच की नैया डोलती है लेकिन डूबती नहीं है। तो अभी हम सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। आज की तारीख है 24 सितंबर 2025। मुरली का मुख्य हेडिंग मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम्हारी बैटरी चार्ज करने। जितना तुम याद में रहेंगे उतना बैटरी चार्ज होती रहेगी। मीठे बच्चे बाप आए हैं तुम्हारी बैटरी चार्ज करने। जितना तुम याद में रहेंगे उतना बैटरी चार्ज होती रहेंगे। आज का प्रश्न है तुम्हारी सच की बेड़ी अथवा नाव को तूफान क्यों लगते? तुम्हारी सच की बेड़ी अथवा नाव को तूफान क्यों लगते हैं? इसका उत्तर है क्योंकि इस समय आर्टिफिशियल बहुत निकल पड़े हैं। कोई अपने को भगवान कहते हैं, कोई रिद्धि सिद्धि दिखाते, इसलिए मनुष्य सच को परख नहीं सकते। सच की बेड़ी को हिलाने की कोशिश करते हैं परंतु तुम जानते हो हमारी सच की नाव कभी डूब नहीं सकती। आज जो विघ्न डालते हैं वे कल समझेंगे कि सदगति का रास्ता यहाँ ही मिलना है। सबके लिए ये एक हट्टी है। कितनी अच्छी बात बाबा ने कही। क्यों नहीं समझ पा रहे हैं? क्योंकि अनेक मत मतांतर है, रिद्धि सिद्धि वाले हैं, कुछ न कुछ दिखाते हैं। बाबा कहते आगे चल करके क्या समझेंगे, यही एक हट्टी है जहाँ से सदगति मिलती है। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति अथवा रूहों प्रति, क्योंकि रूह अथवा आत्मा सुनती है कानों के द्वारा, धारणा भी आत्मा में होती है, बाप की आत्मा में भी ज्ञान भरा हुआ है। बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है इस जन्म में, सारे कल्प में तो नहीं बनते ना। तो बाबा कहते हैं बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है इस जन्म में। भक्ति मार्ग के 63 जन्म, द्वापर युग से तुम देह अभिमान में रहते हो। आत्मा क्या है ये भी पता नहीं रहता, आत्मा ही जरूर, आत्मा ही शरीर में प्रवेश करती है, दुख भी आत्मा को होता है। कहा भी जाता है पतित आत्मा और पावन आत्मा। पतित परमात्मा कभी सुना है क्या? पतित आत्मा कहेंगे, पतित पावन आत्मा कहेंगे। बाबा कहते क्या कभी पतित परमात्मा सुना है क्या? शरीर के अंदर परमात्मा अगर होता तो पतित भी परमात्मा हो जाए। तो मुख्य बात है आत्म अभिमानी बनना। आत्मा कितनी छोटी है, उसमें कैसे पार्ट भरा हुआ है, ये भी किसको पता नहीं। आत्मा इतनी छोटी है, आत्मा ही पार्ट बजाती है, आत्मा ही पतित बनती है, आत्मा ही पावन बनती है। बाबा की इतनी सारी बातें कोई नहीं जानता है, ये भी किसको पता नहीं है। तुम तो नई बात सुनते हो, ये याद की यात्रा भी बाप ही सिखलाते हैं, और कोई सिखला न सके। मेहनत भी इसमें है, घड़ी घड़ी अपने को आत्मा समझना है। जैसे देखो ये इमरजेंसी लाइट आई है, उसमें बाबा के टाइम पर अभी नहीं नहीं निकली थी इमरजेंसी लाइट, निकली थी तो यहाँ पर लाए थे, क्योंकि यहाँ माउंट में तो लाइट बार बार जाती ही रहती थी। एक छोटी सी इमरजेंसी लाइट ला के रखी थी बाबा के टाइम पर, तो बाबा उदाहरण दे रहे हैं। जैसे देखो ये इमरजेंसी लाइट आई है जो बैटरी पर चलती, और आजकल लाइट क्या चलती है, सोलार पे चलती है। आज से कुछ समय पहले भी यहाँ पर बैटरी पे ही लाइट चलती थी ना, तो बाबा कहते जो बैटरी पर चलती है इसको फिर चार्ज करते हैं। बाप है सबसे बड़ी पावर, बैटरी से चार्ज करते हैं, पावर आती है तो सबसे बड़ी पावर है बाप। बाप है सबसे बड़ी पावर। आत्मा कितनी ढेर है, सबको उस पावर से भरना है। बाप है सर्वशक्तिवान। हम आत्माओं का उससे योग नहीं होगा तो बैटरी कैसे चार्ज हो। अब बाबा कहते आत्मा की बैटरी डाउन हो गई है, उसको चार्ज करने का तरीका क्या है, बाबा से योग लगाना है। हम आत्माओं का उनसे योग नहीं होगा तो बैटरी कैसे चार्ज होगी। सारा कलप लगता है डिस्चार्ज होने में, अभी फिर बैटरी को चार्ज करना होता है। बच्चे समझते हैं कि हमारी बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, अब फिर चार्ज करनी है, परंतु कैसे। डिस्चार्ज हो गई है तो उसको चार्ज कैसे करना है, कैसे। बाबा कहते हैं मेरे से योग लगाओ। ये तो बहुत सहज समझने की बात है। बाप कहते हैं मेरे साथ बुद्धि योग लगाओ तो तुम्हारी आत्मा में पावर भरकर सतो प्रधान हो जाएगी। पढ़ाई तो है ही कमाई, योग से सतो प्रधान पावन, पढ़ाई से बाबा कहते हैं कमाई। पढ़ाई तो है ही कमाई, याद से तुम पावन बनते हो, आयु बड़ी होती है, बैटरी चार्ज होती है। हर एक को देखना है, अब बाबा कहते क्या देखना है, हर एक को देखना है कितना बाप को याद करते हैं। बाप को भूल जाने से क्या नुकसान होता है, कितना बाप को याद करते हैं चेक करना है। अगर बाबा को भूल जाते हैं तो क्या नुकसान होता है, बाप को भूल जाने से ही बैटरी डिस्चार्ज होती है। कोई का भी सच्चा कनेक्शन है नहीं, सच्चा कनेक्शन है ही तुम बच्चों का बाप के साथ। दुनिया में लोग भगवान को याद करते हैं लेकिन है कौन, वो तो जानते नहीं है। तो बाबा कहते तुम बच्चों का सच्चा कनेक्शन है बाप के साथ। बाप को याद करने बगैर ज्योति कैसे जगेगी। ज्ञान भी सिर्फ एक बाप ही देते हैं। तुम जानते हो ज्ञान है दिन और भक्ति है रात, फिर रात में होता है वैराग्य। ज्ञान दिन, भक्ति रात, और रात में ही फिर वैराग्य, फिर उसके बाद सदगति मिलती है, फिर दिन शुरू होता है। बाप कहते हैं क्या करना है, रात को भूलो और दिन को याद करो। स्वर्ग है दिन और नरक है रात। तुम बच्चे अब चैतन्य में हो। ये शरीर तो विनाशी है, मिट्टी का बनता है और मिट्टी में मिल जाता है। आत्मा तो अविनाशी है ना, बाकी बैटरी डिस्चार्ज होती है। अभी बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम बच्चे अभी क्या बनते हो, बाबा कहते अभी तुम बच्चे बहुत समझदार बनते हो। क्यों? क्योंकि अपने को पहचाना, बाबा को पहचाना, आत्मा रूपी बैटरी को चार्ज करते ना। अभी तुम कितने समझदार बनते हो, तुम्हारी बुद्धि अविनाशी है ना। तो बाबा कहते हैं तुम्हारी बुद्धि चली जाती है अपने घर में, वहां से हम आए हैं। यहाँ सूक्ष्म वतन का तो मालूम पड़ गया, सारे कल्प के अंदर सूक्ष्म वतन का मालूम नहीं पड़ता, लेकिन अभी संगम पर ही सूक्ष्म वतन का मालूम पड़ गया। यहाँ तुमको सूक्ष्म वतन का मालूम पड़ गया है। वहाँ चार भुजाएं विष्णु को दिखाते, यहाँ तो चार भुजा होती नहीं। सूक्ष्म वतन में विष्णु को चार भुजा दिखाएंगे, क्या क्या दिखाते हैं। तो बाबा कहते हैं यहाँ साकार लोक में चार भुजा होती नहीं। ये भी किसकी बुद्धि में नहीं होगा कि ब्रह्मा सरस्वती फिर लक्ष्मी नारायण बनते। अभी देखते ना देवियों की पूजा हो रही, देवियों की पूजा में देवियों को कितने भुजाएं दिखाते, किसी को चार भुजा, किसी को अष्ट भुजा दिखाते। बाबा कहते वास्तव में एक एक सिंबल है नहीं, लेकिन किसी को चार भुजा तो होती ही नहीं है। ये किसको भी बुद्धि में नहीं होगा कि ब्रह्मा सरस्वती फिर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। इसलिए विष्णु को चार भुजा दी है, सिवाय बाप के कोई भी समझा नहीं सके। आत्मा में ही संस्कार भरते हैं, आत्मा ही तमो प्रधान से फिर सतो प्रधान बनती है। आत्मा ही बाप को पुकारती है, ओ बाबा हम डिस्चार्ज हो गए। ऐसा शब्द तो कभी बोला ही नहीं होगा, ये जरूर कहा कि हम पतित हो गया। पतित होना माने डिस्चार्ज होना। भगवान को पुकारते थे भक्ति में, हम पतित हो गया, आकर के पावन बनाओ। लेकिन बाबा बता रहे हैं आत्मा ही बाप को पुकारती है, ओ बाबा हम डिस्चार्ज हो गए हैं, आप फिर आओ, हमको चार्ज होना है। अब बाप कहते हैं जितना याद करेंगे उतना ताकत आएगी। बाप से बहुत लव होना चाहिए। अब बाबा को याद करेंगे शक्ति आएगी, फिर क्या होना चाहिए, बाप से बहुत लव होना चाहिए। क्या कहना है, बाबा हम आपके हैं। कहते हैं ना कुछ भी हो जाए, बाबा हम आपके, आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेंगे। बाबा हम आपके हैं, आपके साथ ही घर जाने वाले हैं। जैसे पियर घर से ससुराल घर ले जाते हैं ना, यहाँ तुमको दो बाप मिले। कौन कौन से, लौकिक तो है ही है, लेकिन अलौकिक और परलौकिक। बाबा कहते हैं यहाँ तुमको दो बाप मिले हैं, श्रृंगार कराने वाले हैं। ऐसे बाप जो हमारी आत्मा का श्रृंगार कराने वाले हैं। श्रृंगार भी अच्छा चाहिए। अभी आजकल देखो देवियों की पूजा करते, अगर उसका श्रृंगार ठीक नहीं है तो कहेंगे देवी बना तो दिए लेकिन ढंग से नहीं बनाए, तिलक भी जहाँ होना चाहिए वो चाहिए, एक्यूरेट चाहिए। तो बाबा भी क्या कहते हैं, श्रृंगार भी अच्छा चाहिए, अर्थात सर्वगुण संपन्न बनना है। अपने से पूछना है कि मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। मन सा भी भल तूफान आते हैं, कर्मों से कुछ कर्म तो नहीं करता हूं। पहले अपने भी चेक करना है कि मेरे में कोई अवगुण तो नहीं है। तूफान कितने भी मनसा में आए, लेकिन कर्मों से कुछ नहीं करना है। किसको दुख तो नहीं देता हूँ, बाप है ही दुख हरता सुख करता। हम भी सबको सुख का रास्ता बताते हैं। बाबा बहुत युक्तियां बताते रहते हैं, तुम तो हो सेना। पहले बाबा ने कहा याद करो, श्रृंगार करो, अब बाबा क्या करे, तुम तो हो सेना, तुम्हारा नाम ही है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारी। कोई भी आए तो पहले पहले ये पूछो कहाँ से आए हो। कोई आता है नया व्यक्ति, पूछते ना कहाँ से आए, फिर बाबा कहते उनसे पूछो किस लिए आए हो। तो कई बार तो आते थे ऐसे देखने आए हैं, दर्शन करने आए हैं, कोई कहते थे यहाँ क्या हो तो देखने के लिए आए। तो बाबा कहते हैं कहाँ से आए हो, किसके पास आए हो। कहेंगे हम तो बीके के पास आए हैं। अच्छा पूछो ब्रह्मा कौन है। प्रजापिता ब्रह्मा का नाम कभी सुना है। उस समय जब ज्ञान देते थे तो बाबा पक्का कराते थे ज्ञान देने वाला कौन है, किसके द्वारा देते हैं। अच्छा प्रजापिता ब्रह्मा का नाम कभी सुना है। हाँ प्रजापिता ब्रह्मा के तुम भी तो बच्चे हो ना, प्रजा तो सब हो गए ना, तुम्हारा बाप है लेकिन तुम सिर्फ जानते नहीं। ब्रह्मा भी आपका बाप है, सिर्फ तुम जानते नहीं हो। ब्रह्मा भी जरूर किसी का बच्चा होगा, तो सब हो गए उनकी, तो तुम्हारा बाप है तो ब्रह्मा भी जरूर किसी का बच्चा होगा। उनका बाप का शरीर तो देखने में नहीं आता है। ब्रह्मा विष्णु शंकर के ऊपर है शिव बाबा, त्रिमूर्ति शिव कहा जाता है, तीनों का ही रचयिता। अब ब्रह्मा का पिता कौन है, बाबा कहते शिव बाबा है, जिसको त्रिमूर्ति शिव कहते हैं वही रचयिता है। ऊपर में है शिव बाबा, फिर है तीन, जैसे सिजरा होता है ना, बिरादरी होती है, जैसे परमधाम में हर एक धर्म के अलग अलग सिजरे हैं, तो बाबा के तो ऊपर कौन है नीचे कौन है, जैसे सिजरा होता है ना, ब्रह्मा का बाप जरूर भगवान ही होगा। वह है आत्माओं का पिता। तुम बच्चों के नाम रखे तो इनका भी नाम रखा। बाबा ने बताया ना शुरू में कितने नाम रखे थे, जो आए हर एक के ओरिजिनल नाम तो दूसरे थे, लेकिन बाबा ने जो नाम दिए वो अंत तक वही नाम चलते आते। तो बाबा कहते जैसे तुम बच्चों के नाम रखे ऐसे इनका भी नाम रखा। कहते हैं ये मेरा दिव्य अलौकिक जन्म है, तुम बच्चों को तो एडॉप्ट करता हूँ, बाकी अब अंतर तुम बच्चों को एडॉप्ट करता हूँ बाकी इनमें प्रवेश करता। कितनी अच्छी बात कि ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश करते हैं और हम बच्चों को एडॉप्ट करते हैं, बाकी इनमें प्रवेश करता हूँ फिर तुमको सुनाता हूँ। इसलिए ये हो गए बाप दादा, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों कौन हो गए बाप दादा। जिसमें प्रवेश किया उनकी आत्मा तो है ना। बाबा को भी नशा रहता था कि शिव बाबा मेरे बाजू में आकर के बैठते हैं, जिसमें प्रवेश किया उनकी आत्मा तो है ना, मैं उनके बाजू में आकर बैठता हूँ। दो आत्माओं का पाठ तो यहाँ बहुत अच्छा चलता है। आत्मा को बुलाते हैं तो आत्मा कहाँ आकर के बैठेगी। दुनिया में पहले भी था ना भक्ति में, आजकल तो क्या हो सकता है इतना नहीं होता है, तो उसमें आत्माओं को बुलाते थे और उनको खिलाते थे, तो बाबा कहते तो वो आकर के कहाँ बैठेगी, पास में बैठेगी ना। आत्मा को बुलाते हैं तो आत्मा कहाँ आकर बैठेगी, जरूर ब्राह्मण के बाजू में आकर बैठेगी। ये भी दो आत्माएं हैं बाप और दादा इनके लिए बाप कहते हैं, अपने जन्मों को भी नहीं जानते। अब शिव बाबा ब्रह्मा के लिए भी कहते हैं, ये अपने जन्मों को नहीं जानते हो, तुमको भी कहते हैं, तुम भी तो अपने जन्मों को नहीं जानते थे। अब स्मृति आई है, कल्प कल्प 84 का चक्र लगाया है, फिर वापिस आते हैं, ये है संगम योग। अब ट्रांसफर होते हैं, योग से तो सतो प्रधान बन जाएंगे, बैटरी चार्ज हो जाएगी, फिर सचिव में आ जाएंगे, बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहता। ये सारा चक्र संगम युग में ही फिरेगा, सचिव में जाएंगे वहां थोड़ी याद रहेगा, बुद्धि में सारा चक्र फिरता रहता है। डिटेल में तो जा नहीं सकेंगे, सचिव में क्या करेंगे कैसे करेंगे, बाबा कहते सब छोटी छोटी बातों में तो जा नहीं सकेंगे, डिटेल में तो जा नहीं सकेंगे, जान के लिए आयु होती है, फिर सूख जाता है। यहाँ भी सब मनुष्य जैसे कि सूख गए, नहीं पेड़ होता है सूख जाता है, पत्ते गिरने लगते हैं, सूख जाते गिरते रहते हैं, और तना भी सूख सूख करके हिलने लगता है। तो बाबा कहते अभी मनुष्यों की हालत क्या है, यहाँ भी मनुष्य जैसे सूख गए हैं, एक दो को दुख देते रहते। हरे पत्ते होंगे तो कितना अच्छा लगता है, सूखे हुए होंगे तो देखेंगे क्या लगता है। तो बाबा कहते एक दो को दुख देते रहते हैं। अब सबका शरीर भी खलास हो जाएगा, बाकी आत्माएं चली जाएंगी। ये ज्ञान बाप के सिवाय तो कोई दे ना सके, बाप ही विश्व की बादशाही देते, बाप ही सतो प्रधान बनाते हैं, पावन बनाते हैं, बाप ही ज्ञान देते हैं, बाप ही विश्व के बादशाही देते हैं। उनको कितना याद करना चाहिए, इतना बाबा देते हैं तो बाबा की तुमको कितना याद करना चाहिए। याद में न रहने से माया का थप्पड़ लग जाता, माया जोर से थप्पड़ मारे, एक होता धीरे से, एक होता है बहुत जोर से, जो जाकर के बहुत हालत खराब करता है। सबसे कड़ा थप्पड़ है विकार का। युद्ध के मैदान में तुम भी तो ब्राह्मण हो ना, तुमको तूफान आएंगे, परंतु कोई भी विकर्म नहीं करना है, विकर्म किया तो हार खाई। बाबा से पूछते हैं ये करना पड़ता है, बाबा के पास आते थे ना परिवार के परिवार, तो बाबा को कहते बाबा क्या करे, बच्चे बहुत तंग करते हैं। तो बाबा ने एक अच्छी युक्ति बताई थी, बच्चों को मारो नहीं, थोड़ा उनको समझाओ। फिर बाबा ने उदाहरण दिया, जैसे कृष्ण को उखली से बांध देते थे, आजकल के बच्चों को उखली से बांधना भी कोई सही थोड़ी है, तो उस समय तो बात था, बच्चे मान भी जाते थे सुन भी लेते थे, अभी तो उनको प्यार से ही समझाना है। तो बाबा से पूछते बाबा ये करना पड़ता है, बच्चे तंग करते हैं तो गुस्सा आ जाता है, विकर्म किया तो हार खाए। तो बाबा कहते हैं बच्चों को अच्छी रीति संभालेंगे नहीं तो खराब हो जाएंगे, कोशिश करके थप्पड़ नहीं लगाओ। आज के टाइम पर न स्कूलों में न घरों में किसी भी बच्चे को हाथ नहीं लगा सकते, हाथ लगाए थप्पड़ लगाए तो बच्चा तो और ही वो करता है, और भी उनके ऊपर बहुत सी बातें आ जाती है। इसलिए बाबा कहते कोशिश करके थप्पड़ नहीं लगाओ। श्री कृष्ण के लिए भी दिखाते है ना, ओखली से बांधा, रस्सी से बांधा, खाना ना दो, थोड़ी देर नहीं देंगे तो आप ही ठीक हो जाएगा, ऐसा नहीं कि पूरा दिन नहीं देना है, शायद थोड़ी देर के लिए। बाबा कहते हैं रस्सी से बांधो, खाना ना दो, रो रो करके आंखें कहेंगे अच्छा अब नहीं करेंगे। आजकल क्या है, बच्चों को बांधना छोड़ो, कुछ भी करो, प्यार से समझाओ तो मान जाते हैं ना। तो बाबा कहते हैं रो रो करके कहेंगे अच्छा अब नहीं करेंगे। बच्चा है फिर भी करेगा, बच्चा में चंचल है ना, जब उसको कुछ मिल जाएगा तो ठीक हो जाए, नहीं मिलेगा फिर वो चंचलता करेगा। तो बाबा कहते बच्चा है फिर भी करेगा, खाना ना बच्चा बाबा भी बच्चों को शिक्षा देते हैं, बच्चे कभी भी विकार में मत जाना, कुल कलंकित नहीं बनना है। लौकिक में भी अगर कोई कपूत बच्चा होता है तो माँ बाप क्या कहते हैं, ये काला मुंह कर मुंह करते हो, ये क्या करते हो, ये काला मुंह करते हो। कोई बच्चा ऐसा निकल आए तो माँ बाप को भी क्या कहना पड़ता है ना, पूरे परिवार का नाम खराब किया। तो माँ बाप कहते हैं ना, ये क्या काला मुंह करते हो, कुल को कलंक लगाते हो, हार जीत जीत हार होते होते आखिर जीत हो जाए। बाबा बच्चों को उम्र बता रहे, आथत दे रहे हैं कि हार जीत जीत हार होते होते आखिर जीत हो जाएगी। सबकी बेड़ी अथवा नाव को तूफान बहुत लगेंगे, क्योंकि आर्टिफिशियल बहुत निकल पड़े हैं। कोई अपने को भगवान कहता, कोई क्या कहता। अभी भी आज की दुनिया में कितने मिलेंगे आपको, कोई कहेगा मैं भगवान हूँ, कोई कहेगा मैं बाबा हूँ, कोई कहेगा मैं मम्मा हूँ, कोई ऐसे ऐसे भी हैं कहेगा मम्मा मेरे में आती है, फिर कहेगा नहीं नहीं मैं ही मम्मा हूँ। अरे मम्मा बाबा भगवान हो तो वैसा कर्म भी तो करो ना। तो बाबा कहते इन बातों से बहुत ही ध्यान रखना है। कोई अपने को भगवान कहते हैं, कोई क्या कहते हैं, रिद्धि सिद्धि भी बहुत दिखाते हैं, साक्षात्कार भी कराते हैं। बाप आते ही हैं सर्व की सदगति करने। फिर ना ये जंगल रहेगा, ना जंगल में रहने वाले, जंगल ही नहीं होगा तो रहेंगे कैसे। फिर ना ये जंगल रहेगा और ना जंगल में रहने वाले रहेंगे। अभी तुम हो संगम युग पर, जानती हूँ ये पुरानी दुनिया कब्रिस्तान हुई पड़ी है। कोई मरने से भी दिल थोड़ी लगाते, कोई मरने वाले से भी दिल थोड़ी लगाते हैं। ये दुनिया तो गई की गई, विनाश हुआ की हुआ। बाप कहती हैं, बाप आते ही है तब जब नई दुनिया पुरानी होती। बाबा कहते जब दुनिया पुरानी होती है तब बाप आते हैं, बाप आते ही तब है जब नई दुनिया पुरानी होती है। बाप को अच्छी रीत याद करेंगे तो बैटरी चार्ज होगी। भल वाणी तो बहुत अच्छी अच्छी चलाते हैं, अब बाबा रिजल्ट भी बताते हैं, भल ज्ञान बहुत अच्छा अच्छा सुनाते हैं, भल वाणी तो बहुत अच्छी अच्छी चलाते हैं, परंतु याद का जोहर नहीं है तो वह ताकत भी नहीं रहती है। जोहरदार तलवार नहीं रहती। पहले जमाने में तलवार चलाते थे ना, उसको अच्छी तरह से पावर घिस घिस करके उसको तेज करते थे। तो बाबा कहते हैं जोहरदार तलवार नहीं है। बाप कहते हैं ये कोई नई बात नहीं है, हर बार हुआ है होगा ही। बाबा कहते हैं कोई नई बात नहीं है, 5 वर्ष पहले भी आए थे। बाप पूछते हैं आगे कब मिले। ये बाबा का क्वेश्चन जो था बहुत ही फेमस था, लेकिन इस क्वेश्चन के अंदर कई राज समाये हुए थे। बाबा तो ऐसे हर बार हर ग्रुप से पूछते थे, लेकिन इस क्वेश्चन में ही पता पड़ जाता था हर आत्मा की अपनी अंदर की अवस्था कैसी है, कैसे बाप को पहचाना है, कहाँ तक पहचाना है, कितना बाप से कनेक्शन है। यह क्वेश्चन सिंपल, कितना भी उनको पक्का करा दो फिर भी कहेंगे नहीं बाबा हम पहले नहीं मिले थे, फिर याद करेंगे तब कहेंगे हाँ कल अब पहले मिले थे। तो बाबा पूछते हैं 5 वर्ष पहले भी आए थे। बाबा पूछते हैं आगे कब मिले हो, तो कहते हैं कल पहले मिले थे। सुनाने का तरीका, उसके जवाब देने के तरीका से बाबा जान जाते थे कि इस बच्चे को ज्ञान का कितना नशा हुआ है। कहते हैं कल पहले मिले थे, फिर कोई कह देते, बाबा कहते हैं, बाबा पूछते हैं आगे कब मिले हो, तो कहते हैं कलप पहले मिले थे, फिर कोई कह देते ड्रामा आपे ही पुरुषार्थ कराएगा। कई कई नए नए आते थे ना, तो बाबा पुरुषार्थ के लिए बात करते थे, कहते कि वो मेहनत करें, जब ड्रामा में ही हमारा पार्ट है तो ड्रामा तो आपे ही पुरुषार्थ कराएगा। फिर बाबा क्या जवाब दे रहे हैं, कह देते ड्रामा आपे ही पुरुषार्थ कराएगा। अच्छा अब ड्रामा पुरुषार्थ करा रहा है ना, तो करो, एक जगह बैठ तो नहीं जाना है। जिन्होंने कलप पहले पुरुषार्थ किया है वह करेंगे, अभी तक जो नहीं आए हैं वह आने ही हैं। अब कौन कौन आएंगे वो भी बाबा बता रहे हैं, कई बाहर के अभी तो सब आ रहे हैं, सुन रहे हैं, टीवी के माध्यम से भी सुनते हैं। तो बाबा कहते हैं जो अभी तक नहीं आए हैं वह आएंगे ही, जो चलते चलते भाग गए हैं, शादी जाकर की है, अगर उनका भी ड्रामा में पार्ट होगा तो आए। अभी तो इतने एग्जाम्पल हैं, जो डिससर्विस करते थे, धारणा में नहीं चल सकते थे, चले गए, फिर जाकर के कई अपने घर बसाए, फिर बाद में आके खड़े हो जाते, नहीं नहीं अब हमको रियलाइज हुआ, तो धीरे धीरे वो आ ही रहे हैं। तो बाबा कहते हैं वे आने हैं, जो चलते चलते भाग गए, शादी आकर जाकर की, उनका भी ड्रामा में पार्ट होगा तो वह फिर आकर के पुरुषार्थ करेंगे। जाएंगे कहाँ, केवल भारत में नहीं, विदेश में भी ऐसा है, कई हैं जो बहुत अच्छे चलते थे छोड़ कर के चले गए, फिर अभी पुरुषार्थ करने के लिए आ भी रहे, आते भी रहते हैं। बाबा कहते हैं चलते चलते भाग गए, शादी जाकर के उनका ड्रामा में पार्ट होगा तो वह आकर के पुरुषार्थ करेंगे। जाएंगे कहाँ, बाप के पास तो सबको कैसे आना है, अब बताओ नई बात, बाप के पास सबको कैसे आना, जैसे होता है ना डॉग होता है, उसको भूख लगती आ जाता है तो वो पीछे से पूछ लटकाता रहता है, घूमता रहता है, लेकिन डॉग नहीं है। लेकिन बाबा कहते कैसे आएंगे, बाप के पास तो सबको पूछ लटकाना ही पड़ेगा, अथवा आना है आना ही पड़ेगा। लिखा हुआ है भीष्म पितामह आदि भी अंत में आते हैं, अभी तो कितना घमंड है, फिर वह घमंड उनका पूरा हो जाएगा। तुम भी हर 5000 वर्ष के बाद पाठ बजाते हो, राजाई लेते हो, फिर गवाते हो, दिन प्रतिदिन सेंटर्स भी बढ़ते जाए। भारत में तो देखो कितनी गीता पाठशाला, कितने सेंटर्स, बड़े बड़े रिट्रीट सेंटर भी बढ़ते ही जा रहे हैं, खुलते ही जा रहे हैं, विदेशों में भी अभी बढ़ते जा रहे हैं, खुलते जा रहे हैं। तो बाबा कहते हैं दिन प्रतिदिन सेंटर्स बढ़ते जाते, भारतवासी जो खास देवी देवताओं के पुजारी हैं उनको भी समझाना है। सचिव में देवी देवताओं का धर्म था तो जो उनकी पूजा करते हैं, क्रिश्चियन लोग क्राइस्ट की महिमा करते हैं, हम आदि सनातन देवी देवता धर्म की महिमा करते हैं। हम सब कौन हैं, आदि सनातन देवी देवता धर्म के हैं, उसके बारे में वर्णन करते हैं, और हम सब आदि सनातन देवी देवता धर्म की महिमा करते हैं। यह किसने स्थापन किया, लोग समझते हैं कृष्ण ने स्थापन किया, तब तो उसकी पूजा करते रहते, तुम्हारे में भी सब नंबर वन है, कोई कितनी मेहनत करता कोई कितनी करता है, दिखाते हैं ना गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठा लिया। अब हर एक का अपना अपना पुरुषार्थ है, तो बाबा कहते दिखाते हैं ना गोवर्धन पर्वत को उंगली पर उठा लिया। अभी ये पुरानी दुनिया है, सब चीजों से ताकत निकल गई है, सोना भी खानियों से नहीं निकलता, जितना सोना आदि चांदी था वो निकाल लिया, फिर भी अभी भी कहीं ना कहीं पर कोई ना कोई खानियां छिपी हुई है, खुदाई करते हैं कुछ ना कुछ रास्ता निकल आता है, क्योंकि भारत को फिर से भरपूर बनना है, सोना भी खानियों में नहीं निकलता है। स्वर्ग में तो सोने के महल होते हैं, अभी तो गवर्नमेंट तंग हो गई है। क्यों? क्योंकि कर्जा लेना पड़ता है। उस समय की बात है, गवर्नमेंट के पास इतना नहीं था, सोना आदि भी कर्ज में रख करके फिर लिया, सब कुछ किया, सोना कर्जा देना पड़ता है। वहां तो अथाह धन है, दीवारों में भी हीरे जवाहरात लगे रहते हैं, हीरों की जड़त का बहुत शौक होता है। क्या होगा वहां पर, इतना बड़ा इंटरेस्ट कि महल सिंपल नहीं बनेंगे, हर महल के अंदर दीवारों पर बहुत सुंदर हीरे जवाहरात लगाते हैं, जिसकी और रोशनी से लाइट से ऑटोमेटिकली लाइट चलती रहती है। तो बाबा कहते हैं हीरों की जड़त का शौक रहता है, वहां धन की कमी नहीं है, कानून का खजाना रहता है, अल्लाह अवल दीन का भी खेल दिखाते हैं, थका करने से महल निकल आते हैं, यहाँ भी दिव्य दृष्टि मिलने से स्वर्ग में चले जाते हैं, वहां प्रिंस प्रिंसेस के पास मुरली आदि भी कैसे होगी, प्रिंस प्रिंसेस के पास मुरली आदि के हर एक की मुरली पर हीरे जवाहरात लगे होंगे। तो बाबा कहते हैं वहां प्रिंस प्रिंसेस के पास मुरली आदि सब हीरों से हीरों की रहती है, यहाँ की तो कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो पहनकर बैठे तो लूट कर ले जाए। यहाँ तो कोई भी ऐसी अच्छी चीज पहनी होगी, पहले तो लोग देखते रहेंगे, फिर मौका ढूंढते रहेंगे इसकी ये चीज कहाँ से उठाए, क्योंकि मिलती नहीं है, तो बाबा कहते पहन ही नहीं सकते। यहाँ तो कोई ऐसी चीज पहनकर बैठे तो लूट कर ले जाए, छुरा मार कर भी ले जाएंगे, वहां पर ये बातें होती नहीं। ये दुनिया ही बड़ी पुरानी गंदी है, इन लक्ष्मी नारायण की दुनिया तो वहां वहां थी, हीरे जवाहरातों की महल थे, अकेले तो नहीं होंगे ना, बाबा कहते कोई एक थोड़ी महल होगा, लक्ष्मी नारायण का टॉप का होगा, उससे औरों के भी होंगे, अकेले के तो नहीं होंगे ना, उनको कहा जाता है स्वर्ग। तुम जानती हो बरोबर हम स्वर्ग के मालिक थे, हमने ये सोमनाथ मंदिर बनाया। किसने बनाया था सोमनाथ मंदिर, किसने बनाया था, बाबा ने बनाया या आपने बनाया? बाबा अकेले थोड़ी बनाएंगे हैं, बाबा के साथ आपने भी तो बनाया ना, इसलिए जानते हैं कि हमने भी बनाया था। तुम जानते हो हमने सोमनाथ मंदिर बनाया था, ये समझते हो कि हम क्या थे, फिर भक्ति मार्ग में कैसे मंदिर बना करके पूजा की, आत्मा को तो 84 जन्मों का ज्ञान है, कितने हीरे जवाहरात थे। बाबा कहते वो सब कहाँ गए, कहाँ भेज दिया, वह सब कहाँ गए, आहिस्ते आहिस्ते सब खलास होते गए, मुसलमान आए इतना तो लूट कर ले गए, जो जाकर कब्रों में हीरे जवाहरात लगाए, ताज महल आदि बना। पहले मुस्लिम आए सारा लूट के गए, सारे अपने वहां जाके लगाए, फिर उसके बाद जो लूट के जाता है ना उसका माल उसके पास रहता ही नहीं है, फिर अंग्रेजों ने लूट लिया, अब अंग्रेज भर लूट के जाए भारत की चीज तो फिर भारत के पास आएगी। तो मुसलमान इतना तो लूट कर ले गए, जो कब्रों में जाकर हीरे लगाए, ताजमहल आदि बनाया, फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट आई तो क्या किया, सब कुछ खाली कर दिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट वहां से खोद कर ले गई, अभी तो कुछ भी नहीं है, कहीं एक मिल तो जाए उसके पीछे लग जाते हैं। बाबा कहते अभी तो कुछ भी नहीं है, भारत बेगर है, आज की तारीख में भारत बेगर नहीं है, रिच बनता ही जा रहा है। उस समय वो कंडीशन थी, कुछ कुछ बातें ऐसी हो गई थी जो कई बातों के लिए उसको भारत को कई चीजें लेनी पड़ती थी। अभी बाबा बता रहे पहली बात है भारत बेगर है, भारत ही कर्जा लेते रहते हैं, अनाज चीनी आदि कुछ नहीं मिलती। याद है ना एक बार एक ऐसा हो गया था, और अमेरिका क्या करता था, लाल गेहूं बेचते थे, इतनी खराब थी और चीनी वगैरह पर, लेकिन भारत ने इतनी मेहनत की और यहाँ से भी सबको बेचते रहते हैं। तो अब विश्व को बदलना है, परंतु उससे पहले आत्मा की बैटरी को सतो प्रधान बनाने के लिए चार्ज करना है, बाप को याद जरूर करना है, बुद्धि का योग बाप के साथ हो, उनसे ही तो वर्षा मिलता है। माया की इसमें लड़ाई होती, जब बाबा को याद करते ना तो माया भी उसमें विघ्न डालती है, पढ़ाई में तो नहीं डालती है लेकिन याद में डालती है। तो बाबा कहते माया की इसमें लड़ाई होती है। आगे इन बातों को तुम थोड़ी समझते थे, जैसे दूसरे थे वैसे तुम भी थे, अभी तुम वो सब संगम योगी और वे सब हैं कल योगी। तुम मनुष्य कहेंगे इनको तो जो आत्मा है सो करते रहते। मनुष्य कहते हैं, ब्रह्मा कुमारी इसके लिए क्या कहते हैं, इनको तो जो आता है वो सब कहते रहते, पहले कहते थे लेकिन अभी जो कहते हैं तो समझते जो ये बताती है वो राइट बताती है। तो बाबा कहते हैं मनुष्य कहेंगे इनको तो जो आता है सो कहते रहते हैं, लेकिन समझाने की भी युक्तियां होती। बाबा कहते दुनिया वाले भल कुछ भी कहें लेकिन तुम बच्चों को किसी युक्ति से कोई ना कोई ढंग से समझाना है, लेकिन समझाने की भी युक्तियां होती है ना। धीरे धीरे तुम्हारी वृद्धि होती जाएगी। अभी बाबा बड़ी यूनिवर्सिटी खोल रहे, उसमें तो छोटे छोटे सेंटर थे ना, तो बाबा ने फिर कहा बड़े बड़े सेंटर खोलो, तो बाबा बता रहे हैं अभी बाबा बड़ी यूनिवर्सिटी खोल रहे हैं। इसमें समझाने के लिए चित्र तो चाहिए ना, आगे चलकर तुम्हारे पास ये सब चित्र ट्रांसलाइट के बन जाए। बाबा को बहुत अच्छा लगता साधारण चित्र बनाना, नहीं उसको अच्छा बनाओ। फिर बाबा कहते ऐसे बनाओ ट्रांसलाइट के जो दूर से देखते व्यक्ति को समझ में आ जाए। तो बाबा कहते हैं आगे चल तुम्हारे पास ये सब चित्र ट्रांसलाइट के बन जाएंगे, जो फिर तुमको समझाने में भी सहज होगा। समझाना तो क्या, वो खुद ही देख करके समझ जाएंगे। तुम जानते हो हम अपनी बादशाही फिर से स्थापन कर रहे हैं बाप की याद और ज्ञान से। अपनी बादशाही कैसे स्थापन कर रहे हैं, बाप की याद और ज्ञान से। माया बीच में बहुत धोखा देती है। बाप कहते हैं बच्चे धोखे से बचते रहो, युक्तियां तो बतलाते रहते हैं, मुख से सिर्फ इतना बोलो कि बाप को याद करो तो तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे और तुम ये लक्ष्मी नारायण बन जाएंगे। ये बैजेस भी भगवान ने खुद बनवाए, बाबा ने खुद कह करके बैजेस बनवाए थे, डायरेक्शन दिए थे। तो बाबा कहते ये बैजेस आदि जो है भगवान ने खुद बनवाए हैं, तो इनका कितना कदर होना चाहिए। बाबा के सब बच्चों को बैज का तो बहुत रिस्पेक्ट है ना, बहुत प्यार भी है। तो बाबा कहते हैं तो इनका कितना कदर होना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे सिक्के ला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। अब सुनेंगे धारणा के लिए मुख्य सा। पहला है सर्वगुण से अपना श्रृंगार करना है, कभी किसी को भी दुख नहीं देना है, सबको सुख का रास्ता बताना है। दूसरा सारी दुनिया कब्रिस्तान हुई पड़ी, इसलिए इससे दिल नहीं लगाने हैं, स्मृति रहे अभी हम ट्रांसफर हो रहे हैं, हमें तो नई दुनिया में जाना है। आज का वरदान माया व विघ्नों से सेफ रहने वाले बाप दादा की छत्र छाया के अधिकारी भव। माया व विघ्नों से सेफ रहने वाले बाप दादा की छत्र के अधिकारी माँ फिर से बताती, माया व विघ्नों से सेफ रहने वाले बाप दादा की छत्र छाया के अधिकारी भव, जो बाप दादा के सिक्की लगे लाडले हैं उन्हें बाप की छत्र छाया अधिकार रूप में प्राप्त होती। किसे प्राप्त होती है? बाबा की छत्र छाया, जो बाप दादा के सिक्की लदे लाडले हैं उन्हें बाप दादा की छत्र छाया अधिकार के रूप में प्राप्त होती है। जिस छत्र छाया में माया की आने की ताकत ही नहीं, इतनी पावरफुल है, जिस छत्र छाया में माया के आने की ताकत नहीं, वह सदा माया पर विजयी बन जाते हैं। ये याद रूपी छत्र छाया सर विघ्नों से सेफ कर देती है। किसी भी प्रकार का विघ्न छत्र छाया में रहने वालों के पास आ नहीं सकता। छत्र छाया में रहने वालों के लिए मुश्किल से मुश्किल बात भी सहज हो जाती है। पहाड़ समान बातें रूई समान अनुभव होती है। स्लोगन, प्रभु प्रिय, लोकप्रिय और स्वयं प्रिय बनने के लिए संतुष्टता का गुण धारण करो। प्रभु प्रिय, लोकप्रिय और स्वयं प्रिय बनने के लिए संतुष्टता का गुण धारण करो। अभिशारी, अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। अब लगन की अग्नि को प्रज्वलित कर योग को ज्वाला रूप बनाओ। विशेष याद की यात्रा को पावरफुल बनाओ। ज्ञान स्वरूप के अनुभवी बनो। आप श्रेष्ठ आत्माओं को शुभ वृत्ति और कल्याण की वृत्ति और शक्तिशाली वातावरण, अनेक तड़पती हुई भटकती हुई पुकार करने वाली आत्माओं को आनंद, शांति और शक्ति की अनुभूति कराएगी। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति। आप सबको मालूम हो कि भारतवासी की सीजन जो है भट्टी की, वो अच्छा ट्रांसपोर्ट विंग से एक बात आ रही है, ट्रांसपोर्ट विभाग से, क्योंकि आपको पता है ना सर, उस बीच में ट्रांसपोर्ट की बड़ी गाड़ियां नहीं जाती थी। आज से शुरू हो जाएगी कि प्रातः 9 बजे और शाम को 5 बजे जो गाड़ियां चलती थी, आज से फिर ट्रायल के लिए वो भेजेंगे। अच्छा, फिर है अच्छा, आपको बताया मृत्युंजय भाई ने एक सूचना भेजी, आपको पता हो 9 से लेकर 13 अक्टूबर तक शांतिवन में ग्लोबल समिट का कार्यक्रम रखा है। उस कार्यक्रम के लिए आज शाम को 6 बजे शांतिवन के मीटिंग राजीव मीटिंग हॉल में रखा है। डिपार्टमेंट इंचार्ज वहां जा सकते हैं। और आप सबको मालूम हो कि 1 अक्टूबर से इस बार विदेशी भाई बहनों की सीजन जो है वो 1 अक्टूबर से शुरू हो रही है, और कुछ विदेशी भाई बहने 30 तारीख को, कुछ उससे पहले भी आ जाएंगे, लेकिन 1 अक्टूबर को इस वर्ष पहली बार अधिकतर इस समय पीस ऑफ माइंड रिट्रीट होती है, लेकिन इस बार थोड़ा चेंज हुआ है, इनर पीस इनर पावर, जो मिडल ईस्ट कंट्री के गेस्ट के लिए और एशियन कंट्रीज के गेस्ट के लिए होती है। तो गेस्ट 1 तारीख से आना शुरू हो जाएंगे। पहले ये कार्यक्रम रहेगा और उसके बाद 9 से 13 ग्लोबल समिट शांतिवन में होगी, उसके बाद 14 से 21 तारीख तक पीस ऑफ माइंड रिट्रीट है, और उसके बाद डबल विदेशी भाई बहनों का बीच बीच में आना भी आरंभ रहेगा, और फिर डबल विदेशी भाई बहनों की सीजन आरंभ हो जाएगी। इसलिए मकान वाले यहाँ तो सब अनुभवी और समझदार हैं कि वो किस प्रकार से मकानों को फिर से सेट करना है, वो फिर से आज से करना शुरू कर देंगे। अच्छा, ओम शांति। अभी हम सभी बाबा की याद में बैठेंगे। जो भाई बहने एक रात के लिए शांतिवन से हाथ खड़ा करें, जो एक रात के लिए आए। अच्छा, आप सबको मालूम हो कि सबका